कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस URL katha-path.blogspot.in। सादत हसन मंटो की कहानी तोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें पहुंचा दिया जाए पाकिस्तान, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात ठीक थी या नहीं। बहरहाल बुद्धिमानों के फैसले के अनुसार इधर उधर ऊंचे स्तर की कॉन्फ्रेंस हुई और आखिरकार एक दिन पागलों के तबादले के लिए नियत हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके अभिभावक हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए थे, और जो बाकी थे उन्हें सीमा पार रवाना कर दिया गया वहां पाकिस्तान से, क्योंकि करीब करीब सब हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर पहुंचा दिए गए। उधर की मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में जब तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प और कौतुकपूर्ण बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से रोजाना बाकायदी के साथ जमींदार पढ़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका मित्र संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक दिन एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुरा दिया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी में आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक मुसलमान पागल ने नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस बुलंदी से लगाया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और अचेत हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे, इनमें अधिकतर ऐसे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था और वो फांसी के फंदे से बच गए थे। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का क्यों विभाजन हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सभी घटनाओं से ये भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ जाहिल थे। उनकी बातचीत से वे कोई नतीजा नहीं निकाल सकते थे। उनको सिर्फ इतना ही मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आजम कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाया है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये कहां है, इसकी स्थिति क्या है, इसके विषय में वे कुछ नहीं जानते थे। यही कारण है कि पागलखाने में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं था इस उहापोह में थे कि वे पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहां है, और अगर वे पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वे कुछ अरसा पहले यहां रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे लगातार भाषण देता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसलों पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं न पाकिस्तान में, मैं तो इस पेड़ पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ गया तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों के गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MMC पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाघ की एक खास रोष पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, उसमें ये तब्दीली प्रकट हुई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना शुरू कर दिया। चनयूट एक मोटे मुसलमान पागल ने जो मुस्लिम लीग का एक सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और दिन में 15-16 बार नहाया करता था, एकदम नई आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे एक दिन अपने जंगले में घोषणा कर दी कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि उस जंगल में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में पड़कर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे प्रेम हो गया था। यद्यपि उसने वकील को ठुकरा दिया था मगर दीवानगी की हालत में वो उसको भूला नहीं था। चुनाचे वो उन तमाम मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई थी और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को पागलों ने समझाया कि वो दिल छोटा न करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इस ख्याल से कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे, उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे छिप छिप कर घंटों इस समस्या पर बातचीत करते रहते कि पागलखाने में उनकी हैसियत किस तरह की होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागलखाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर समय उसकी जबान से अजीबोगरीब शब्द सुनने में आते, उपड़दी गिड़गिड़दी एक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लाल टेन। वो दिन को सोता था ना रात को। पहरेदारों का ये कहना था कि 15 बरस के इस लंबे अरसे में वो एक क्षण के लिए भी न सोया था, लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर इस शारीरिक तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान और पागलों के तबादले के विषय में जब कभी पागलों में चर्चा होती तो वो ध्यान से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या हाल है तो वो बड़ी गंभीरता से जवाब देता, उपड़ दी गिड़गिड़ दी एक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक्सिंग ने ले ली और दूसरे पागलों ने पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक्सिंग कहां है, कहां का रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते खुद इस उलझन में फंसते चले जाते कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है, क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाएगा या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाएगा, और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ना हो जाएंगे। एक सिख पागल के केश छिद्रे होकर बहुत थोड़े ही रह गए थे, चूंकि वो बहुत कम नहाता था, दाढ़ी और बाल आपस में जम गए थे जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन वो आदमी किसी का नुकसान नहीं करता था, 15 बरसों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागलखाने में जो पुराने नौकर थे वो उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक्सिंग में उसकी कई जमीनें थीं। अच्छा खाता पीता था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागलखाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था मगर उसे टोबा टेक्सिंग कहते थे। उसे बिल्कुल ये न मालूम था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके स्वजन और संबंधी उससे मिलने आते तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनाचे वो एक दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह से नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सिर में तेल लगाकर कंघी करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवाकर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वे उससे कुछ पूछते तो वो चुप रहता या कभी कभी उपड़ दी गिड़गिड़ दी एक्स दी बेध्याना दी मूंग की दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक अंगुल बढ़ती बढ़ती 15 बरस में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसे पहचानता ही न था। जब वो बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू किया कि टोबा टेक्सिंग कहां है। जब संतोषजनक उत्तर न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात को भी नहीं आती है। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की वो आवाज भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आने की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे लोग आएं जो उससे सहानुभूति प्रकट करते थे और उसके लिए फल मिठाइयां और कपड़े लाते थे। वो यदि उनसे पूछता कि टोबा टेक्सिंग कहां है तो वे निश्चित बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका विचार था कि वे टोबा टेक्सिंग से ही आते हैं जहां उसकी जमीन है। पागलखाने में एक पागल ऐसा भी था जो अपने आप को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक कहकहा लगाया और कहा, वो न पाकिस्तान में है और न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई कई बार मिन्नत खुशामद से कहा कि वो उसे हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और भी अनगिनत हुक्म देने पड़ते थे। एक दिन तंग आकर वो उस पागल पर बरस पड़ा, उप्पड़ दी, गिड़गिड़ दी, एक्स दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ वाहे गुरु द खालसा एंड वाहे गुरु दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका मतलब ये था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले के कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। वो पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हटा और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका, ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। बिशन सिंह ने फजलुद्दीन की ओर एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी राजी खुशी हिंदुस्तान चले गए थे, मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा, बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने कुछ रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह चुप रहा। फजलुद्दीन ने कुछ कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं, अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई बधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर सिंह से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है, दो भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी ने कट्टी दी थी पर वो 6 दिन की होकर मर गई, और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, हर वक्त तैयार हूं, और मैं ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया था। बिशन सिंह ने मरुंडों की एक पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह? उसने तनिक आश्चर्य से कहा, कहाँ है? वही है जहां था। बिशन सिंह ने पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में?
हिंदुस्तान में। नहीं नहीं पाकिस्तान में।
हिंदुस्तान में?
नहीं नहीं पाकिस्तान में।
फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया, उप्पड़ दी, गिड़गिड़ दी, एक्स दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर्फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थीं और तबादले की तारीख भी निश्चित हो चुकी थी। सख्त सर्दियां थीं। लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लॉरियां पुलिस के दस्ते के साथ रवाना हुई, संबंधित अफसर भी उनके साथ थे। बाघा के बॉर्डर पर दोनों ओर के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे, जो निकलने को तैयार होते उनको संभालना मुश्किल होता क्योंकि वो इधर उधर भाग जाते। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़कर अपने शरीर से अलग कर देते। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था, आपस में लड़ झगट रहे थे, रो रहे थे, बक रहे थे, कानों में पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल स्त्रियों का शोरगुल अलग था और सर्दियां इतनी कड़ाके की थीं कि दांत से दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस तबादले को नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहां फेंका जा रहा है। थोड़े से वे जो सोच समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार झगड़ा होती होती बचा क्योंकि कुछ हिंदुस्तानियों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और जब उसको दूसरी ओर भेजने के संबंध में अधिकारी लिखत पढ़त करने लगे तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? संबंधित अधिकारी हंसा और बोला, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछल कर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, किंतु उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह कहाँ है? और जोर जोर से चिल्लाने लगा, उप्पड़ दी, गिड़गिड़ दी, एक्स दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया, देखो टोबा टेक सिंह अब हिंदुस्तान में चला गया है, यदि नहीं गया है तो उसे तुरंत ही भेज दिया जाएगा, किंतु वो ना माना।
जब जबरदस्ती दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की गई तो वो बीच में एक स्थान पर इस प्रकार अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब कोई ताकत उसे वहां से नहीं हटा सकेगी, क्योंकि आदमी बेजरर था। इसलिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई, उसको वहीं खड़े रहने दिया गया और शेष काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले स्तब्ध खड़े हुए बिशन सिंह के गले से एक गगनभेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था औंधे मुंह लेटा था। इधर कांटेदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे कांटेदार तारों के पीछे पाकिस्तान, बीच में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था टोबा टेक सिंह पड़ा था। मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह। कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस, URL kathapath.blogspot.in।